इस हफ्ते माइंड विद मसल पॉडकास्ट में क्वेश्चंस ऑफ द वीक आर, कैसे पता चले कि किस बॉडी पार्ट में ज्यादा फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैं, किस बॉडी पार्ट में ज्यादा स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हैं। डाइट एंड वर्कआउट करने के बावजूद भी वेट लॉस नहीं हो रहा, क्या किया जाए? क्या मेंटेनेंस कैलोरीज पे मसल गेन किया जा सकता है? जब हम सरप्लस में खाते हैं तो क्या नई बढ़ी हुई कैलोरीज हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज बन जाती हैं? ऑल दिस एंड मच मोर इन दिस वीक्स एपिसोड ऑफ द माइंड विद मसल पॉडकास्ट। वेलकम एवरीबॉडी, माइंड विद मसल पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आप सबको जिन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस की वजह से ही ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट पॉसिबल हो पाया है। और इस एपिसोड की वजह से और भी बहुत सारे लोग जिनके सिमिलर क्वेश्चंस हैं, जो कि सिमिलर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर, उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दिनेश साहू की तरफ से। पूछते हैं, सर आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट शुड बी एन ऑप्टिमल डाइट विच आई शुड बी कंज्यूमिंग। माय वर्कआउट्स आर हार्ड बट व्हेन इट कम्स टू डाइट आई एम जस्ट नॉट एबल टू फिगर आउट। सो दिनेश भाई, वर्कआउट बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन डाइट के बारे में ये कन्फ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ऑप्टिमल डाइट इनके लिए क्या है। दिनेश जी, जैसे आपको नहीं पता है कि आपके लिए ऑप्टिमल डाइट क्या है, उसी तरह से ना तो मुझे ना ही आप किसी को भी डीएम करोगे, किसी यूट्यूबर को या फिर किसी और बंदे को जिसको, जिसके बारे में आपको लगता है कि ये मेरे सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब दे सकता है, ना ही उसको पता चलेगा कि आपके लिए ऑप्टिमल डाइट क्या है। अनलेस अनटिल के किसी को आपके बारे में 100% सारी चीज़ें पता हों, आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो, जिस कंडीशन में अभी आप हो उस कंडीशन में आप कैसे पहुंचे हो, मतलब कि किस तरह का वर्कआउट करके, किस तरह का डाइट पैटर्न फॉलो करके आप करंट सिचुएशन में पहुंचे हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्लस आपकी फूड एलर्जीज या फिर आपको कोई और इशू तो नहीं है, किसी चीज़ को लेके कोई दिक्कत नहीं है, खाने वाली चीज़ को लेके आमतौर पर लोगों को कुछ दिक्कत हो जाती है तो वो तो नहीं है। एंड ऑल्सो ट्रेडिशनली आप लोग क्या खा रहे हो, आपके घर में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, किस तरह का खाना आप खाते आ रहे हो, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है बिफोर के कोई आपको डाइट प्लान बता सके कि आप इस तरह से डाइट फॉलो करो। नाउ ये बात तो सही है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से आपके लिए एक मतलब सटीक डाइट बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जनरल गाइडलाइंस ज़रूर होती हैं जो कि मेरे ख्याल से अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी डाइट, किस तरह की डाइट बढ़िया रहेगी आपके गोल्स के लिए। वो जनरल गाइडलाइंस कौन सी हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ें आप खा रहे हो क्या वो हेल्दी चीज़ें हैं, क्या वो अनहेल्दी चीज़ें हैं, अनहेल्दी हेल्दी ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होती हैं, हम सबको पता होता है कि क्या चीज़ हेल्दी है, क्या चीज़ अनहेल्दी है। तो पहला स्टेप ये होता है कि अपनी डाइट में से अनहेल्दी चीज़ों को निकाल के उसकी जगह पे धीरे धीरे हेल्दी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना। अगर आपकी डाइट में कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है तो वो एडजस्टमेंट करना आपका सबसे पहला काम है। दूसरी चीज़, दूसरा स्टेप जो आप फॉलो कर सकते हो कि आपने खाने का टाइम अपना निश्चित करना है कि मैंने इसी टाइम पे खाना है। इसी टाइम पे खाने का मतलब ये नहीं कि अगर आपने लंच 1 बजे करना है तो 1 बजे ही करना है, 1:10 या फिर 12:50 नहीं हो सकते। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक सेट टाइम के अराउंड ही आप खाना खाते हो और जितनी बार खाना खाते हो उतनी बार ही हर रोज़ आप खाना खाते हो, तो इससे आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज, आपका मेंटेनेंस खाना जितना आपके वज़न को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, वो फिगर आउट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते, जब भी आपका दिल करता है जो भी आपके हाथ में आता है वो आप खा लेते हो, तो इससे आपका ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है कि आपका मेंटेनेंस खाना आपके वज़न को मेंटेन रखने के लिए जो ज़रूरी है वो फिगर आउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो पहली चीज़ें, ये 2 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि आपने अनहेल्दी चीज़ें निकालनी है, अपने खाने में से हेल्दी चीज़ें ऐड करनी है और सेट टाइम पे खाना है। उसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो इंडिविजुअल गोल के मुताबिक होता है। इंडिविजुअल गोल, अगर आपका गोल है कि मैंने फैट लॉस करना है, तो जो चीज़ें आप खा रहे हो उसमें से थोड़ा सा कम आप खाना अगर शुरू करोगे तो आपको फैट लॉस इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ करोगे, थोड़ा सा सरप्लस में खाओगे, तो आप मसल बिल्डिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो डाइट का मतलब नेसेसरली ये नहीं होता कि कोई बंदा आपको, जब तक कागज़ के ऊपर कोई खाने वाली चीज़ें सेट टाइम पे आपको इतने बजे ये वाली चीज़ खानी है, इतनी खानी है, ये अगर लिख के कोई नहीं दे रहा तो आपको डाइट का कुछ पता नहीं है। आपको डाइट का पता है, आपके घर वालों को भी डाइट का पता है, सिर्फ एक कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग जिन्होंने कोई कम्पीट नहीं करना है किसी फील्ड में या फिर उनका काम कैमरे के सामने अपनी बॉडी दिखाना नहीं है, ज़्यादातर लोग जो आप ये बात सुन रहे हो, आपके लिए ये अप्रोच कहीं ज़्यादा बेटर है कि अपनी कॉमन सेंस लगा के ये 3-4 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं वो अगर आप फॉलो करोगे तो उससे भी आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। ये एक आपका बेस है, ये बेस आपको पता होना चाहिए। इसके आगे का स्टेप है कि अगर आप मान लो करना ही चाहते हो, कुछ कंपेटिटिव फील्ड में कुछ करना चाहते हो, आप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन लड़ना चाहते हो या फिर आप कोई और काम करना चाहते हो जिसके लिए आपको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है, वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने से पहले भी आपका ये बेस क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हर चीज़, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको 100% पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप किसी से पर्सनल कोचिंग लेके अपनी उसी डाइट में से एडजस्टमेंट करके फिर आप अपने उस गोल के लिए आगे बढ़ सकते हो, लेकिन ये बेस आपको पहले क्लियर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्यन भट्ट जी पूछते हैं, हाउ टू नो विच बॉडी पार्ट ऑफ आर्स इज़ डोमिनेटेड बाय फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। मतलब कि हमें कैसे पता चले कि किस बॉडी पार्ट में ज़्यादा फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैं और किस बॉडी पार्ट में ज़्यादा स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हैं। नाउ ये क्वेश्चन दिमाग में आना स्वाभाविक है, क्योंकि हम ट्रेनिंग कुछ इस तरह से करते हैं कि कभी हमें लगता है कि हमें फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को टारगेट करना चाहिए, इस तरह की ट्रेनिंग करनी चाहिए, कभी हमें लगता है कि हमें स्लो ट्विच मसल फाइबर्स को ट्रेन करना चाहिए, उस तरह की हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। सो अगर हमें पता चल जाए कि किसी मसल ग्रुप में अगर ज़्यादा फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैं तो उसी तरह की अगर हम ट्रेनिंग करेंगे तो शायद हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। सो कौन से बॉडी पार्ट्स में ज़्यादा फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स में ज़्यादा स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं, इसका सिंपल सा आंसर है कि जिन भी मसल ग्रुप्स को लगातार काम करना पड़ता है, बेशक के आप बैठे हुए हो, बेशक आप खड़े हुए हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो या फिर पैदल चल रहे हो, इस तरह के जो मसल ग्रुप्स होते हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ को पॉसिबल करते हैं, इन मसल ग्रुप्स में ज़्यादा स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं। स्लो ट्विच मसल फाइबर्स ऐसे होते हैं जो कि मेनली ऑक्सीजन के ऊपर रन करते हैं। एरोबिक टाइप एक्टिविटी, कार्डियो टाइप एक्टिविटी जो आप करते हो, उस तरह की एक्टिविटी में जो मसल ग्रुप हमारे काम में आते हैं उनको हम स्लो ट्विच मसल फाइबर्स कहते हैं। जिन मसल ग्रुप्स में ज़्यादा आपको एक्सप्लोसिव एनर्जी चाहिए, एक्सप्लोसिव टाइप एक्टिविटी में यूज़ होते हैं, उनमें ज़्यादा फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं। नाउ ये पता चल भी जाए हमें कि किस मसल ग्रुप में ज़्यादा किस तरह के मसल फाइबर्स हैं, उससे आपको कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट आपको इस बात से होगा कि जो ट्रेनिंग आप कर रहे हो वो ट्रेनिंग आपके एंड गोल की तरफ टारगेटेड है या फिर नहीं है। सो लेट्स से कि आपका गोल मसल बिल्ड करना है, जो कि मोस्टली जो लोग ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट उनका होगा, तो अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं फास्ट ट्विच या फिर स्लो ट्विच मसल फाइबर्स को टारगेट कर रहा हूँ। आपकी ट्रेनिंग हमेशा मसल बिल्डिंग की तरफ ही टारगेटेड होनी चाहिए। मसल बिल्डिंग रैप रेंज, जैसे कि आपको पता ही है कि 5 से लेकर आप 20-25 तक भी चले जाओगे, ये रैप रेंज से आप मसल बिल्ड कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि स्लो ट्विच मसल फाइबर्स के लिए मैं अलग से ट्रेनिंग करूँ या फिर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स के लिए मैं अलग से ट्रेनिंग करूँ। अगर आपकी ट्रेनिंग मसल बिल्डिंग की तरफ टारगेटेड है तो इवन वो वाला मसल ग्रुप जिसमें प्राइमरीली स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो तो नहीं हो सकते ना, वो बहुत बड़े नहीं हो सकते। तो आपकी ट्रेनिंग का असर उस मसल में मौजूद फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स पे ही होगा, और आपको उस मसल में जो साइज इंक्रीज मिलेगा उस मसल में मौजूद फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स की वजह से ही मिलेगा। सो ये बात आप अपने दिमाग में से निकाल दो कि अगर मैं सपोज करो कि किसी मसल का साइज बड़ा करना है तो मैं स्लो ट्विच मसल फाइबर्स को स्पेसिफिकली टारगेट करूंगा तो जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हैं वो साइज में इंक्रीज हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। स्लो ट्विच मसल फाइबर्स जो हैं वो उनका काम क्या है, हमें काम समझना पड़ेगा ना। स्लो ट्विच मसल फाइबर्स करते क्या हैं कि लंबे समय तक हमें किसी एक्टिविटी में बनाए रखना उनका काम है, और लंबे समय तक वो एफिशिएंटली ये काम कैसे कर सकते हैं, अपना साइज कम रख के। अगर कोई मसल, कोई चीज, सपोज करो कि कोई कार है उसका इंजन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो इतनी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट नहीं होगी, इतनी ज़्यादा वो लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगी। इसके उल्टा अगर कोई इंजन लाइट एंड फ्यूल एफिशिएंट होगा तो वो ज़्यादा लंबे समय तक काम कर सकता है। सो इसी तरह से कुदरत ने हमारी बॉडी डिज़ाइन की है कि जो मसल फाइबर्स लंबे समय तक किसी एक्टिविटी को करने में हमें एबल बनाते हैं, उन मसल फाइबर्स को हम साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मतलब ये नहीं है कि उन मसल ग्रुप्स को आपने मसल बिल्डिंग टाइप ट्रेनिंग से टारगेट नहीं करना। अगर आप उनको मसल बिल्डिंग टाइप ट्रेनिंग से टारगेट करोगे तो उन मसल ग्रुप्स में मौजूद जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे कि आपकी बाकी की बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ पूछते हैं, हाउ टू ट्रेन बैक आफ्टर लॉन्ग ब्रेक। बहुत ही सिंपल है जी, बैक के लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है कि आपने जब लंबे समय के बाद बैक को ट्रेन करना है तो उसको स्पेसिफिकली इस तरह से ट्रेन करना चाहिए बाकी बॉडी के मुकाबले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से आप बाकी के मसल्स को ट्रेन करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप बैक को भी ट्रेन करोगे, और उसका तरीका क्या है कि आप अपने लोड को बहुत ही लाइट करते हो। आमतौर पर अगर मेरी कोई लंबी छुट्टी हो गई, जैसे कि 5-6 महीने पिछले साल मेरी छुट्टी हो गई थी जिम में, तो मैं क्या करता हूँ कि बहुत लाइट लोड कितना, अराउंड 40-50% जितना भी मैं किसी लिफ्ट में किसी रैप रेंज में मैं करता था यूज़ वेट, उसका 40-50% से मैं स्टार्ट करता हूँ एंड धीरे धीरे फिर मैं बिल्डअप करना शुरू करता हूँ। हाई इंटेंसिटी एंड हाई वॉल्यूम से आप बच के रहो शुरू में, अराउंड 40-50% ऑफ वेट जो आप इस्तेमाल कर रहे थे किसी भी रैप रेंज में, उसका 40-50% से आप स्टार्ट करके धीरे धीरे आप अपनी वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी बिल्ड करते हो। अगला क्वेश्चन कार्तिक अंडरस्कोर रस्तोगी अंडरस्कोर के आर, ये इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, पूछते हैं, दो क्वेश्चन है इनके एक्चुअली, ये पूछते हैं कि क्या ब्रो स्प्लिट मसल ग्रोथ के लिए अच्छा वर्कआउट स्प्लिट है, और दूसरा क्वेश्चन है इनका, जिम जाने वाले लोगों के लिए कार्डियो टाइप एक्टिविटीज़ में भी अच्छा होना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है इनका कि क्या ब्रो स्प्लिट अच्छा वर्कआउट स्प्लिट है, उसका सिंपल सा आंसर है कि ब्रो स्प्लिट अच्छा वर्कआउट स्प्लिट है, लेकिन हमारे पास इससे बेटर वर्कआउट रूटीन्स हैं। जितने भी वर्कआउट रूटीन्स में आपको एक से ज़्यादा बार किसी मसल ग्रुप को हिट करते हो आप वीक में, वो वर्कआउट रूटीन्स ब्रो स्प्लिट से थोड़े से ज़्यादा बेटर हैं, उससे आपको स्लाइटली बेटर रिजल्ट्स फॉर श्योर देखने को मिलेंगे। दूसरा इनका सवाल है कि जिम जाने वाले लोगों के लिए कार्डियो टाइप एक्टिविटीज़ में अच्छा होना भी क्या इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्या आप कार्डियो में अच्छा होना चाहते हैं? अगर होना चाहते हैं तो आपको आपकी प्रायोरिटी पता है और आपके लिए कार्डियो में अच्छा होना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोई बंदा ऐसा हो सकता है कि जो कि कार्डियो में, जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैं कार्डियो में बहुत ज़्यादा अच्छा अगर ना भी हूँ तो मुझे चलता है। हैविंग सेड दैट, ये भी मैं आपको बता दूँ कि कार्डियो में बहुत अच्छा होना और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में बहुत अच्छा होना, ये दोनों ही कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर टाइप में अगर एक्टिविटी करते हो तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड मसल गेन नहीं करोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड मसल बिल्डिंग के ऊपर फोकस्ड हो तो आप कार्डियो में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगे। मतलब ये कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं, आप एवरेज दोनों ही गोल्स में रह सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप एवरेज अमाउंट ऑफ मसल अपने शरीर पे चढ़ा लो, एवरेज अमाउंट ऑफ वेट जिम में जाके उठाओ, एवरेज अमाउंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ आप कर पाओ, लेकिन बेस्ट आप किसी में भी नहीं हो पाओगे। कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटीज़ होने की वजह से अगर आपको बेस्ट होना है किसी चीज़ में, अपना बेस्ट होना है किसी चीज़ में, तो आपको दोनों में से एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द बॉय फ्रॉम लास्ट बैच पूछते हैं, सर एक फुल डे डाइट प्लान फॉर स्किनी पर्सन मिल सकता है क्या? सिंपल आंसर, नहीं मिल सकता है सर, और उसका रीज़न है कि फुल डे डाइट प्लान फॉर स्किनी पर्सन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर ऐसा होता तो हमारे पास कुछ ही तरह की बॉडी टाइप्स हैं, कोई स्किनी फैट है, कोई फैट है, कोई किसी तरह का है, तो बस 4-5 तरह के डाइट प्लान्स इंटरनेट पे आपको मिल जाते और वही डाइट प्लान सब लोग फॉलो करना शुरू कर देते और उनको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। डाइट प्लान्स जो होते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि डाइट प्लान्स जो होते हैं, अगर आपका स्पेसिफिक गोल है तो आपके स्पेसिफिक गोल के मुताबिक, आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक, ऑफकोर्स आपकी ट्रेनिंग हिस्ट्री, आपकी जो आपके डाइट पैटर्न पहले से चले आ रहे हैं, आपकी फूड एंड टॉलरेंस, सब चीज़ों को दिमाग में रख के फिर डाइट प्लान डिज़ाइन किए जाते हैं। बॉडी टाइप के मुताबिक डाइट प्लान्स नहीं बनाए जाते हैं। तो इस वजह से आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन जो पिछले वाला क्वेश्चन था, अगर उसका जवाब आप सुन लोगे तो आपको भी उसी तरह से अपना बेस एक बिल्ड करना पड़ेगा, अच्छी डाइट आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके गोल के मुताबिक स्पेसिफिक चेंजेस अगर करने की ज़रूरत है तो वो स्पेसिफिक चेंजेस बाद में किए जाएंगे। विकी शर्मा जी कहते हैं, ये वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं हफ्ते में 5 बार, इसके अलावा किकबॉक्सिंग, मैकटॉन, HIIT, हिट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं 3 times a week, क्या ये टू मच एक्टिविटी है? क्या इससे इनकी मसल बिल्डिंग एबिलिटी हैम्पर होगी कि नहीं होगी? शॉर्ट आंसर विकी जी, यस होगी, और उसका सिंपल सा रीजन है कि अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो तो आपको कैलोरिक सरप्लस में रहना पड़ेगा, कैलोरिक सरप्लस के बिना आप मसल बिल्ड नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और कैलोरिक सरप्लस में आना यंग लड़कों के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ही ये होता है कि कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है थ्रू आउट द डे, तो उसके साथ साथ वो जो जिम में जाके ट्रेनिंग भी कर रहा है मसल बिल्डिंग के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए कैलोरीज उनकी इनफ नहीं होती हैं उनकी डाइट में, एंड दैट्स वाई वो मसल नहीं बिल्ड कर पाते हैं। अगर आपका गोल मसल बिल्ड करना है और आप इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि जो आपकी बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें से कुछ कुछ आप थोड़ा सा कम करके देखिए, डाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके देखिए, फॉर श्योर आपको हेल्प होगी उससे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो मसल बिल्डिंग के लिए और बाकी की जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, आप किक बॉक्सिंग कर रहे हो, HIIT कर रहे हो, वो अगर आपको ज़्यादा पसंद हैं, वो आप नहीं छोड़ सकते, तो कहीं ना कहीं फिर आपको जो आपकी मसल बिल्डिंग गोल है उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन Rahul.123 पूछते हैं, सर डाइट और वर्कआउट करने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, 2200 कैलोरीज से 1200 कैलोरीज पे आ गया हूँ, शुगर एंड फ्राइड फूड्स भी बंद कर दिए हैं, वेट लॉस नहीं हो रहा है, कटिंग नहीं आ रही है, एनी टिप्स? राहुल जी, ना सिर्फ आप, आपके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी कैलोरीज को बहुत ड्रास्टिकली कम कर देते हैं, कम करने के बाद एक पॉइंट पे आके स्टक हो जाते हैं, बाद में उनको समझ में नहीं आता कि मैं इतनी कम कैलोरीज खाने के बावजूद भी वेट लॉस या फैट लॉस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसका सिंपल सा रीज़न है कि जब आप अपनी कैलोरीज को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हो, 1000-1200 कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं होती किसी भी, अगर आप मेल हैं और आई अज्यूम कि आपकी एवरेज हाइट है, तो आपके लिए 1200 कैलोरीज बहुत ही ज़्यादा कम है। जब आप इतनी कम कैलोरीज के ऊपर अपनी बॉडी को रन कर रहे होते हो, तो आपकी बॉडी अडेप्ट होती है कैलोरीज के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनने की कोशिश करती है, इन अदर वर्ड्स आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देती है, क्योंकि आपने जो डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी है, जो भी करनी है, वो भी तो आपकी बॉडी को करनी है ना, आपने ज़िंदा रहना, आपने आपके दिल का धड़कना चालू रहना चाहिए, आपकी सांस चालू रहनी चाहिए, आप जो उठते बैठते दौड़ते फिरते हो वो एक्टिविटीज़ भी सस्टेन करनी है, तो वो सस्टेन कैसे करेगी आपकी बॉडी, वो सस्टेन करेगी ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज के साथ एफिशिएंट होगे। और उसका तरीका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज के साथ एफिशिएंट होने का एक तरीका यह है कि आपके मसल्स को पेयर डाउन कर दिया जाए, आपकी बॉडी के ऊपर से मसल को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारे लोग फंसते हैं आप ही की तरह, जो कि एक्सट्रीम तरह के डाइट पैटर्न्स फॉलो करते हैं। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो, तो डार्लिंग अभी आपके लिए ज़्यादा बेटर चीज़ ये है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को बिल्ड करने की तरफ ध्यान दो। जब तक आपका ध्यान वेट लॉस और वेट स्केल से आगे नहीं जाएगा, तब तक आप इस खराब सिचुएशन में से बाहर नहीं निकल पाओगे। थोड़े टाइम के लिए आपको वेट स्केल के ऊपर से अपना ध्यान जो है, जो ऑब्सेशन है आपका वेट स्केल के ऊपर, वो थोड़ी देर साइड पे रख के किसी और गोल के ऊपर काम करना चाहिए आपको। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, तो उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। आप देखिए के वीक बाय वीक क्या आप जिम में स्ट्रांग हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। आपका प्राइमरी गोल अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना होना चाहिए। और ये काम आप कैसे करोगे, ट्रेनिंग विद नवजोत वर्कआउट सीरीज़ का जो फर्स्ट फेज़ है वो आप फॉलो कर सकते हो। उस टाइप की ट्रेनिंग आप करोगे, साथ में थोड़ा सा जितना आप खा रहे हो, 1200-1300 कैलोरीज अगर आप खा रहे हो, तो करीबन 8-10% की, यानी कुछ 100-120 कैलोरीज आप बढ़ा के हर दिन, उसके साथ आप स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेज की तरफ ध्यान दो। काफ़ी टाइम तक आपको यह काम करना पड़ सकता है। अपने मेटाबॉलिज्म को बिल्ड करो, अपनी कैलोरीज को, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को उस पॉइंट तक आपको धीरे धीरे करके लेके जाना पड़ेगा, जहां से अगर आप दोबारा से कट मारो तो 500-600-800 कैलोरीज आपकी उड़ भी गई, तो भी आप एक कंफर्टेबल प्लेस पे लैंड कर सको। तो वो चीज़, ये अप्रोच आपको अभी फॉलो करनी पड़ेगी। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जब आपने अपनी कैलोरीज को बढ़ाना है, तो हो सकता है कि आपके वेट में इजाफा हो, उससे आपने डरना नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो काम आपने ख़राब किया है, मतलब अपनी कैलोरीज को एक्सट्रीमली लो लेवल पे लेके गए हो, यही काम आपने रिवर्स में अभी नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम से 500-1000 कैलोरीज बढ़ा दो, उससे आपका फैट परसेंटेज बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ में, आपके मसल में उतना ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, और आप फिर रिवर्स में फंस जाओगे जाके। तो ये चीज़ अभी आपका सॉल्यूशन है कि आपको रिवर्स डाइटिंग करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए जो आपका वेट लॉस ऑब्सेशन है, इसको त्यागना पड़ेगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन DEIU463, ये इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, पूछते हैं, कैन आई गेन मसल इन मेंटेनेंस कैलोरीज? सो क्या आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे रह के मसल बिल्ड कर सकते हो? उसका आंसर है येस एंड नो। येस के आप जब जस्ट आपने स्टार्ट ही किया जिम जाना, आप बिल्कुल फ्रेश हो, तो हो सकता है कि कुछ हफ्तों के लिए आप थोड़े बहुत मसल गेन कर सको, लेकिन अगर आपने ऑप्टिमल तरीके से मसल गेन करना है तो आप सोचिए ना कि आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स तो देना ही पड़ेगा ना अपनी बॉडी को। अगर आपकी बॉडी में कैलोरीज ही नहीं है, आपकी बॉडी में इनफ प्रोटीन ही नहीं है, तो जो मसल बिल्ड करना है वो कहाँ से बिल्ड करना है? हवा से तो बिल्ड नहीं हो सकता ना। तो कैलोरीज तो बॉडी को चाहिए ही चाहिए। मेंटेनेंस पे अगर कोई डिबेट करना चाहे और सिर्फ साबित ही करना चाहे कि क्या कभी मेंटेनेंस पे रह के मसल गेन किया जा सकता है, तो फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम अंडर सर्टन कंडीशंस यस, ये पॉसिबल है। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग ये जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपके लिए सिंपल सा एक रूल है कि आपको थोड़ी बहुत आपकी कैलोरीज इंक्रीज करनी ही पड़ेंगी, आपकी बॉडी को बिल्डिंग ब्लॉक्स देने ही पड़ेंगे, तभी वो बिल्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित महाजन की तरफ से, पूछते हैं जो हर वीक सरप्लस में अगर 100-150 कैलोरीज सरप्लस जाती हैं तो क्या वो इवेंचुअली हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज बन जाती हैं? उसका आंसर है यस सर। जो आप सरप्लस में आज खा रहे हो वो आपका सरप्लस हमेशा के लिए नहीं रहेगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज 2000 कैलोरीज खा रहा हूँ और उसमें मैंने 200 का इजाफा किया, 200 मतलब के 2200 कैलोरीज मैंने अपनी खानी शुरू की, तो कुछ हफ्तों के बाद, हो सकता है कि 2 हफ्तों के बाद, 3 हफ्तों के बाद, जो थोड़ा बहुत मेरा वेट इंक्रीज़ होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा मान लो 60 किलो वज़न था और 3 हफ्ते मैंने थोड़े से सरप्लस के बाद मेरा वेट हो गया है 61 किलो, तो अब 3 हफ्तों के बाद जो 61 किलो मेरा वेट है उसको मेंटेन करने के लिए कम से कम मुझे 2200 कैलोरीज, जो कि मेरी बढ़ी हुई कैलोरीज हैं सरप्लस में जो मैं खा रहा था, वो 2200 कैलोरीज मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं। देखो ना, मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि आपके करंट वेट को मेंटेन करके रखने के लिए जितनी कैलोरीज चाहिए वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं। तो अगर मेरा वेट बढ़ रहा है 61 से 62 से 65 हो रहा है, तो जब मैं 65 को मेंटेन करने के लिए जितनी कैलोरीज खाता हूँ, मान लो 2500 खा रहा हूँ, 2200 से मैंने शुरू किया था, अब मैं 2500 तक पहुँच गया हूँ, तो 65 किलो को मेंटेन करने के लिए अगर मुझे 2500 कैलोरीज लग रही हैं तो वो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, एज सिंपल एज दैट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक, होप यू एन्जॉयड द शो, इफ येस शेयर द लव। अगर आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में या फिर कहीं पे भी सोशल मीडिया में जहाँ पे भी आप एक्टिव हो इस पॉडकास्ट को शेयर करते हो तो इसकी रीच को बढ़ाने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट पे ये एपिसोड सुन रहे हो तो 5-स्टार रिव्यू देके इस पॉडकास्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट भी कर सकते हो। मेरे साथ कोई 1-on-1 इंटरेक्शन करना चाहते हो, कोई बात करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर दैट। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाके माइंड विद मसल जब आप टाइप करोगे तो मुझे ढूंढ लोगे आप। फ्री वर्कआउट प्रोग्राम्स, बहुत सारे डाइट एंड वर्कआउट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए माइंड विद मसल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, मजे करो, स्टे फिट स्टे स्ट्रॉन्ग। यू हैव बीन लिसनिंग टू द माइंड विद मसल पॉडकास्ट।